आप हैं SBS हिंदी के साथ।
पेश है आज के मुख्य समाचार विशाली जैन के साथ। कोषाध्यक्ष जॉर्ज फ्राइडनबर्ग के बजट पर देश भर से आई मिश्रित प्रतिक्रियाएं। भारत में राज्य सरकारें जारी करेंगी वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर। और फुटबॉल में मैनचेस्टर सिटी ने जीती इंग्लिश प्रीमियर लीग। और अब खबरें विस्तार से। फेडरल कोषाध्यक्ष जॉर्ज फ्राइडनबर्ग का कहना है कि नए बजट में आवंटित किए गए अरबों डॉलर ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था को कोविड-19 के असर से उबारने पर केंद्रित हैं। अपना तीसरा बजट पेश करते समय श्री फ्राइडनबर्ग ने ऑस्ट्रेलिया की बेरोजगारी दर को 2025 तक घटाकर 4.5% करने का प्राथमिक लक्ष्य निर्धारित किया है। बुजुर्ग वर्ग, बच्चे और विकलांग इस बजट के केंद्र में रहे हैं। श्री फ्राइडनबर्ग ने 9 नेटवर्क को बताया है कि नौकरियों को बढ़ावा देना इस बजट का मुख्य लक्ष्य है।
You know, the budget we delivered last night will help make the Australian economy stronger and see that the momentum that we've seen in the jobs recovery so far continues. We know that the jobs are coming back, but we've got to keep investing in skills, in infrastructure, in providing tax relief for families, as well as business investment incentives. Lock in that recovery and drive the unemployment rate down, then that will be good news for all of us.
लेबर के कोष प्रवक्ता जिम चामर्स का कहना है कि इस बजट में ऑस्ट्रेलियाई श्रमिकों को पीछे ही छोड़ दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में भत्ता दर कई सालों से जस की तस है। डॉक्टर चामर्स का कहना है कि श्रमिकों के भत्ते में कोई कटौती नहीं आनी चाहिए।
It's remarkable that the government could spend so much money in such a short period of time and have so little to show for it. One of the problems that we have with the budget last night, it was a massive missed opportunity to set this country up for the future in a way that lets working Australians get a piece of the action.
लेबर की वित्त प्रवक्ता कैटी गैलगर ने इस सरकार द्वारा चाइल्ड केयर को औरतों की समस्या बताए जाने की कड़ी निंदा की है। सरकार ने चाइल्ड केयर के मुतालिक $1.7 बिलियन की केंद्रित सहायता का ऐलान किया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 2.5 लाख परिवार इस सहायता का लाभ उठा सकेंगे और औरतों की कार्यबल में प्रतिभागिता बढ़ सकेगी। सुश्री गैलगर ने कहा है कि सरकार चाइल्ड केयर फंडिंग का इस्तेमाल अपनी राजनैतिक फायदे के लिए कर रही है।
Any working parent knows that it's not a women's issue. I mean, how you care for your children is a shared responsibility across the family, but it has been used to bulk up presentationally for a headline how much this government is spending on women's issues, but childcare should not be seen as a women's issue. Yes, it affects how women work and the hours with which they work and as often as primary caregivers, but the responsibility around childcare is a family issue.
फेडरल बजट में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खुलने की नई समय अवधि घोषित होने के बाद क्वांटस एयरलाइन ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों को फिर शुरू करने की योजना को स्थगित कर दिया है। एयरलाइंस की योजना इन फ्लाइटों को इस साल अक्टूबर महीने के अंत से शुरू करने की थी, जिन्हें स्थगित कर अब साल के अंत में दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया है। फेडरल कोष की ऐसी उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा 2022 के मध्य तक धीमी ही रहेंगी और अगले साल के अंत तक ही गति पकड़ पाएंगी। क्वांटस एयरलाइंस का कहना है कि वे अपनी रिपेट्रिएशन और फ्राइट की फ्लाइटों को तब तक यथाव्यवस्था चलाती रहेगी। सार्वजनिक प्रसारक SBS को अपनी भाषा सेवाओं के लिए अगले 3 साल में $29 मिलियन की अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी। इसमें से करीब $10.5 मिलियन साल 2021-22 में दिए जाएंगे और कंपनी के लिए इस साल का अनुमानित ऑपरेटिंग मुनाफा $5 लाख होगा। कार्यकारी निदेशक जेम्स टेलर का कहना है कि ये फंडिंग इस बात का सबूत है कि ऑस्ट्रेलियाई दर्शक और श्रोता स्वतंत्र समाचार, जानकारी और मनोरंजन सेवाओं की कितनी कद्र करते हैं। उन्होंने साथ यह भी कहा कि इस फंडिंग से SBS को अपनी बहुभाषी क्षमताओं का विस्तार करने में सहयोग मिलेगा। विक्टोरिया में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कोई नए मामले नहीं दर्ज किए गए हैं। यह तब आता है जब मेलबर्न में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। स्वास्थ्य मंत्री मार्टिन फुले का कहना है कि जीनोमिक टेस्टिंग जारी है और ये जल्द ही पता चल जाएगा कि यह व्यक्ति वायरस के संपर्क में एडिलेड में संगरोध के दौरान आए थे या नहीं। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि फेडरल सरकार द्वारा मेलबर्न के उत्तर भाग में एक नई संगरोध व्यवस्था के लिए फंडिंग ना देने पर उन्हें खेद है।
We'll continue to engage constructively with the Commonwealth as to the merits of a joint partnership approach to deliver this broadacre quarantine support service to be run by the state, to be funded in terms of its capital by the Commonwealth and as part of a wider system of a variety of opportunities for quarantining that clearly, given the federal government's own predictions, we're going to need for at least the next 18 months, if not substantially longer.
न्यू साउथ वेल्स की प्रीमियर ग्लैडिस ब्रेजिकलियन ने इस सप्ताहांत तक राज्य में लगे कोरोना प्रतिबंधों को हटाने पर निर्णय लेने की आश्वस्ति दी है। पिछले हफ्ते सिडनी में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद राज्य में फिर कड़े कोरोना प्रतिबंध जारी कर दिए गए थे। राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं अब भी यह पता लगाने में जुटी हुई हैं कि आखिर यह व्यक्ति वायरस के संपर्क में आए कैसे। सुश्री ब्रेजिकलियन का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन पर मास्क पहनने की कड़ाई और घरों में 20 लोगों के एकत्रित होने की प्रतिबंध को स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही हटाया जाएगा। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। मध्य पूर्व में कल रात अचानक तनाव बढ़ गया। सालों बाद इस तीव्रता के साथ हुए हवाई हमलों में गाजा में 35 पैलेस्टीनी और 5 इजरायली लोगों ने अपनी जान गंवाई। लगातार हुए इजरायली हमलों में गाजा में एक रिहायशी इमारत ढह गई और दूसरी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। 2014 की जंग के बाद ये इजरायल और हमास के बीच होने वाली सबसे तीव्र कार्यवाही थी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। और अब खबरें भारत से। उत्तराखंड के टेहरी इलाके में बीती शाम एक बादल फट गया। इस आपदा में किसी की भी जान जाने की खबर नहीं आई है, हालांकि संपत्ति का काफी नुकसान दर्ज किया गया है। स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स राहत कार्यों में जुटी हुई है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि
देवप्रयाग टेहरी में काफी बड़े स्तर पे बादल फटने की घटना हुई है और उसमें 7-8 दुकानें और जो आईटीआई की बिल्डिंग को भारी नुकसान हुआ है, किंतु लॉकडाउन की वजह से दुकानें खुली नहीं थी, बंद थी, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। हमारी एसडीआरएफ की टीमें वहां पहुंच गई हैं और यथासंभव मदद पहुंचा रही है।
दिल्ली सहित दक्षिण भारत के कुछ राज्यों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने का फैसला लिया है, क्योंकि वैक्सीन की घरेलू आपूर्ति बढ़ती मांग को पूरा करने में विफल रही है। महामारी की दूसरी लहर के बीच उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा ने पहले ही इस विकल्प को चुन लिया था। केंद्र का कहना है कि वह अब भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 18 करोड़ से अधिक डोज मुफ्त में दे रहा है। राज्यों को अगले 3 दिनों में 7,29,610 अतिरिक्त डोज दिए जाएंगे। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 90 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन के डोज उपलब्ध हैं। फिर भी कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। कई राज्य अब पहली डोज से अधिक ये डोज ले चुके लोगों को दूसरी डोज देने को प्राथमिकता दे रहे हैं, ताकि वैक्सीन का प्रभाव खत्म ना हो जाए। भारत में मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,48,421 मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,33,40,938 हो गई है। इसी दौरान रिकॉर्ड 4,205 मरीजों की मौत भी दर्ज की गई है। पर राहत की बात यह है कि अब ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी तेजी देखने को मिल रही है। मंगलवार को दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 355,338 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए हैं। देश में संक्रमण की पॉजिटिविटी की दर 17.56% हो गई है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी बुधवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 57.34 रुपये और अमरीकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 78 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पिछले 4 सालों में अपनी तीसरी इंग्लिश प्रीमियर लीग जीत ली है। ये क्लब की 5वीं ईपीएल जीत है। कोच पेप गार्डियोला ने अपने मैनेजमेंट में 12 में से 9 बार ये टाइटल जिताया है। मैनचेस्टर सिटी का इस सीजन का सबसे बड़ा मैच चेल्सी के खिलाफ यूवेफा चैंपियन लीग का फाइनल मैच अब भी होना रहता है, लेकिन फैंस फिलहाल जश्न मना रहे हैं।
This is how it feels to be city. This is how it feels to be small. No, it's how it feels great. It feels absolutely amazing. Obviously, it's not the first time in recent years, but it's great. Yeah, it's just euphoric after the year everybody's had. It's so good to have a little bit of joy back in our lives again. So, thank you, Pep. Thank you, Manchester City.
और अब डालते हैं नजर कल यानी गुरुवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल तेज धूप रहने की संभावना है। यहाँ अधिकतम तापमान 22 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में कल बारिश की संभावना है। यहाँ अधिकतम तापमान 17 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में कल दिन चढ़ने के साथ बारिश बढ़ने की आशंका है। यहाँ अधिकतम तापमान 18 डिग्री जबकि न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देश की राजधानी कैनबरा में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। यहां का अधिकतम तापमान 18 डिग्री जबकि न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में कल तेज धूप खिली रहेगी। यहां अधिकतम तापमान 23 डिग्री जबकि न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ब्रिस्बेन में भी कल धूप ही धूप है। यहां अधिकतम तापमान 26 डिग्री जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। डार्विन में कल मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 33 डिग्री जबकि न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप छांव का मौसम रहेगा। दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 डिग्री जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।